अब आहान को समझ नहीं आया कि वो अपना रौनक के साथ क्या रिश्ता बताए। फिर उसने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, वो मैं उसका दोस्त हूँ। तब डॉक्टर बोली, देखिए सर, जो मैडम अंदर मौजूद है वो माँ बनने वाली हैं, शी इज प्रेग्नेंट। जैसे ही आहान ने ये सुना उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसे तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर बम गिरा दिया हो और दिल की धड़कन थम सी गई हो। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाता है और वो दो कदम पीछे लड़खड़ाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। डॉक्टर आहान की इस तरह की हरकतें देखकर सोचने लगी, कहीं ये उस लड़की को पसंद तो नहीं करता? वो लड़की माँ बनने वाली है, शायद इस वजह से उसे इतना ज्यादा धक्का लगा है। इसीलिए डॉक्टर आहान को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डोंट वरी सर, देखिए इस उम्र में तो ये सब चलता रहता है। आजकल लड़कियां अपने रिलेशनशिप में इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि वो किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाती, और शायद इस वजह से। डॉक्टर की बात सुनकर आहान का खून खुलने लगा, क्योंकि डॉक्टर इशारों में ये कहना चाह रही थी कि रौनक किसी के बहकावे में आकर अपनी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। आहान डॉक्टर की ओर देखकर सख्ती से बोला, आपका काम खत्म हो गया, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए उसे कितनी देर में होश आएगा। तब डॉक्टर जल्दी से घबराते हुए हड़बड़ाकर बोली, वो एक्चुअली मैडम को 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर होश आ जाएगा और वो अब बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से निकल गई। डॉक्टर के जाने के बाद आहान कुछ पल दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाकर रौनक को सामना कर सके। आज जिस सिचुएशन में रौनक थी उसका जिम्मेदार पूरी तरह से आहान था और वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन, कुछ घंटे बाद आस्था को होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया उसे ऐसा लगा मानो उसके हाथों को किसी ने बड़ी बुरी तरह से जकड़ रखा है। आंख खुलने के बाद आस्था जैसे ही उठकर बैठी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो वो चौंक गई। अरमान अभी भी उल्लू की तरह जागते हुए आस्था की ओर घूर रहा था। एक पल के लिए अरमान को इस तरह से देखकर आस्था डर गई, क्योंकि अपना दर्द नियंत्रित करने की सख्ती में साथ ही साथ अपनी नींद को नियंत्रित करने के चक्कर में अरमान की आंखों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसे देखकर अच्छा से अच्छा इंसान बौखला सकता था, इस वक्त वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। आस्था जल्दी से अपना हाथ अरमान के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरमान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आस्था एक उंगली तक उसकी अपने हाथ पर से हटा नहीं पाती। आस्था तमतमाते हुए अरमान की ओर देखकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती कर सकते हैं? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे। तब अरमान आस्था के हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, हो क्या गया है तुम्हें? हाँ किस बात से नाराज हो? तुम्हारे लिए ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। अरमान बड़े ही प्यार से आस्था से बात कर रहा था। एक पल को अरमान की मदहोशी भरी और इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर आस्था का दिल पिघलता हुआ सा महसूस होने लगा कि अगले ही पल वो खुद को मजबूत करके बोली, शायद आपको सुनाई कम दे रहा है मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपसे बोला ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरा पति अरमान सिंघानिया एक बिजनेसमैन था जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति अरमान सिंघानिया के एक नहीं बल्कि कई घिनौने चेहरे होंगे और उन चेहरों से मैं बेहद नफरत करती हूँ, समझे आप? ये बोलकर आस्था ने अब जोरों से अरमान का हाथ झटक दिया था, क्योंकि आस्था के मुंह से नफरत की बात सुनकर अरमान का पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। इसी बात का फायदा उठाकर आस्था ने अपना हाथ अरमान से छुड़ा लिया था और बेड से उठकर वो सीधा बाहर की तरफ जाने लगी। अब आस्था को एक पल के लिए अरमान जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे पीछे जाने लगा। वहीं दूसरी ओर आहान इस वक्त पूरी तरह से कश्मकश का शिकार था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसे नानी माँ को सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि आहान की जिंदगी में अरमान के बाद दादाजी और दादाजी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट रखता था तो वो थी नानी माँ, और नानी माँ के बाद आस्था। और आहान चाहता था कि नानी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में ही है तो क्यों ना उन्हीं से थोड़ा सलाह मशवरा किया जाए। क्योंकि जब सभी लोग हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहे थे तब रश्मि ने आहान को मैसेज छोड़ ड्रॉप कर दिया था कि नानी माँ के साथ ही वो सब भी घर आ जाएं। इसीलिए आहान रौनक के साथ साथ एंजल नानी के पास ही रुके हुए थे। इस वक्त एंजल नानी माँ की देखरेख के लिए रुकी हुई थी क्योंकि आहान उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। अब जल्दी से आहान नानी माँ के कमरे की तरफ भागा, क्योंकि रौनक के होश में आने से पहले पहले वो अब नानी माँ को सारा सच बताना चाहता था। वेल, अब जैसे ही आहान नानी माँ के कमरे में गया उसने जाकर देखा नानी माँ तो अभी भी सो रही थीं, क्योंकि रश्मि ने उन्हें नींद का इंजेक्शन इंजेक्ट किया था ताकि वो पीसफुली रेस्ट कर सकें, लेकिन एंजल वहीं पर बैठी हुई कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रही थी। अब आहान को देखकर एंजल उठ खड़ी हुई और बोली, आहान जी आप यहाँ पर? जी बताइए। तब आहान जल्दी से बात बदलते हुए बोला, वो मैं नानी माँ को देखने के लिए आया था, आप पढ़िए ना, प्लीज प्लीज आप बैठिए, पढ़िए अपनी मैगजीन पढ़िए। आहान हर एक बात को 3 से 4 बार लगातार दोहरा रहा था क्योंकि इस वक्त वो खुद बौखलाया हुआ था। उसकी हालत अजीब हो रही थी, उसके दिल में कुछ अजीब सी गुदगुदी सी हो रही थी। उसे कुछ एहसास नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था, वो तो बस इस वक्त किसी को अपने दिल की बात बताना चाहता था। वेल, अब क्योंकि ऑलरेडी 15-20 मिनट होने वाले थे और अगर रौनक होश में आने के बाद किसी को अपने सामने नहीं देखेगी तो बेशक वो डर जाएगी, तो इसीलिए आहान एक बार फिर से रौनक के कमरे की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर आस्था जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने को हुई, अरमान एक बार फिर उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसे सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। आस्था को अगले ही पल एहसास हुआ कि उसके पैर हवा में लटक रहे हैं, क्योंकि वो अरमान की गोद में थी। अब आस्था जोरों से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया छोड़िए मुझे। अब जैसे ही आस्था ने दरवाजे के पास से थोड़ी तेज आवाज में ये बोला, तो जितने भी लोग उस वक्त हॉल में मौजूद थे, दादाजी समेत सभी चौंक कर खड़े हो गए थे और फटाफट से उसे कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए जाने लगे, क्योंकि सब देखना चाहते थे कि आखिरकार क्या हुआ है। आस्था और अरमान तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं ये सोचते हुए जल्दी ही वो सब दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। और जैसे ही उन्होंने सामने आस्था और अरमान को अरमान की गोद में देखा, तो एक पल के लिए सब थोड़ा सा शर्मिंदा से हो गए थे और वहां से वापस जाने लगे। लेकिन आस्था सबको जाते हुए देखकर रोकते हुए बोली, आप सब कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए, उतारिए मुझे। अब आस्था के इस तरह से भड़कते हुए देखकर सब लोग चौंक गए थे। वहीं रश्मि, जो कब से सब्र का बंद लिए बैठी हुई थी, वो तुरंत आस्था के पास आई और उसकी ओर देखकर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए पूछती है, आस्था आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है और ये कैसी बचकानी हरकतें कर रही हो तुम? हाँ, क्या तुम बताओगी हुआ क्या है और तुम्हें किस बात का गुस्सा आया हुआ है? हाँ बोलो, जवाब दो। अब रश्मि की बात सुनकर आस्था ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो बारी बारी से आकाश, सुमित, साथ ही साथ टाइगर, देव और मारिया को देखने लगी,
क्योंकि वो सभी अच्छी तरह से जानते थे कि आखिर आस्था के साथ क्या हुआ है। आस्था को अरमान का सच पता चल गया था, जिसे वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं इन सब आवाज़ों के बीच, इन तेज गूंजती हुई आवाज़ों के बीच, एक और वंशिका, जो कि अपने कमरे में थी, उसका ध्यान उस वक्त पूरी तरह से बाहर हॉल पर ही था। वो भी आस्था की आवाज़ सुनकर फटाफट से नीचे दौड़कर आ गई थी। अब वंशिका को देखकर सबकी आंखों में चिढ़ और खून सा उतर आया था, स्पेशली टाइगर की आंखों में। वो तो बस बेरहमी से वंशिका की जान लेना चाहता था, क्योंकि वंशिका ने अरमान पर जानलेवा हमला किया था। वंशिका के वहां आ जाने पर अचानक टाइगर खुद को रोक नहीं पाया और अपने जख्मी हाथों से वो अचानक वंशिका का गला दबाने के लिए झपटा पड़ा। वहीं आस्था ने जैसे ही ये नज़ारा देखा, उसकी तो हैरानी बढ़ गई थी और वो तेज आवाज में चिल्लाकर उसे रोकते हुए बोली, टाइगर प्लीज भैया छोड़ दीजिए वंशिका को, अगर आपने उसे कुछ हाथ भी लगाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आस्था की बात सुनकर अरमान, जो कि सिर्फ और सिर्फ आस्था को देखे जा रहा था, उसका ध्यान वंशिका और टाइगर पर जाता है और उसने फटाक से टाइगर को रोकने के लिए हुक्म दिया, टाइगर, और उसने केवल इतना ही बोला था कि टाइगर ने तुरंत वंशिका का गला छोड़ दिया था। वहीं अरमान ने अब आस्था को गोद से उतार दिया था। आस्था जल्दी से वंशिका के पास आ गई और उसे पानी पिलाने लगी और उसकी पीठ को थपथपाते हुए रब करने लगती है। अब तो सब लोगों की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी कि आखिरकार आस्था को हो क्या गया है, अपने पति पर हमला करने वाले के साथ वो इतना नॉर्मली बिहेवियर कैसे कर सकती है। वंशिका जान बचाने की, उसके साथ तो वो बड़ा नरमी पेश आ रही है, और अपने पति के साथ इतना रूड बिहेवियर कैसे कर सकती है। तो यही सब बातें सभी लोगों को हैरान कर रही थी। तभी अरमान थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ आगे आया, लेकिन पूरे दबंग अंदाज में वंशिका के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था और आस्था को देखने लगा, जो कि उस वक्त वंशिका की पीठ रब कर रही थी। तब अरमान ने वंशिका की ओर देखकर सख्त आवाज में पूछा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें किसी ने मुझ पर हमला करने के लिए भेजा था? क्योंकि अरमान ये बात अच्छी तरह से जानता था, उसके डेविल किंग रूप के कितने ज्यादा दुश्मन थे और कितने लोग उसकी जान के प्यासे थे, क्योंकि अरमान ने अनगिनत लोगों को बर्बाद किया था। अब वंशिका ने एक नज़र आस्था की ओर देखा और फिर अगले ही पल अरमान की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे किसी ने हायर नहीं किया था, मैंने अपनी मर्जी से आपकी जान लेने की कोशिश की थी। ये कहते हुए वंशिका के मुंह पर, जुबान पर इतनी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई खौफ था, वो एकदम बिना डरे क्लियरली बोल रही थी। अब वंशिका की आंखों में बिल्कुल भी डर ना देखकर और इतना उसे क्लियर बोलता हुआ देखकर सब लोग चौंक गए थे, क्योंकि अरमान सिंघानिया के सामने आकर अच्छे अच्छे की जुबान बंद हो जाया करती थी। लेकिन वंशिका तो इतने साफ तरीके से अरमान को उसी के मुंह पर कह रही थी कि हाँ, उसी ने अरमान की जान लेने की कोशिश की थी। तभी अरमान ने अचानक अपने हाथ की उंगली को अपने माथे पर रब करना शुरू कर दिया था। एक पल को अरमान की हरकत देखकर आस्था के रोंगटे खड़े हो गए थे और सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वो समझ चुके थे कि अरमान इस तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।